SBS हिंदी पर मैं हूं आपके साथ अनीता बरार। आइए साप्ताहिकी में नजर डालते हैं कि इस सप्ताह यानी सोमवार 3 फरवरी के इस सप्ताह में कौन सी खबरों ने हमें प्रभावित किया। सप्ताह की शुरुआत में यानी सोमवार 3 फरवरी को विदेश मंत्री पेनी वोंग ने यहूदी विरोधी भावना से निपटने के प्रयासों के तहत श्वेत वर्चस्ववादी नेटवर्क टेररग्राम के लिए आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण प्रतिबंधों की घोषणा की। ये पहली बार है जब किसी ऑनलाइन इकाई के साथ इस तरह की कार्यवाही की गई है जिसमें 10 साल तक की जेल की सजा और भारी जुर्माना शामिल है। 4 दूसरी चरमपंथी संस्थाओं को आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण प्रतिबंधों के लिए फिर से सूचीबद्ध किया जिनमें शामिल हैं नेशनल सोशलिस्ट ऑर्डर, द रशियन इंपीरियल मूवमेंट, सोनेक्रेक डिवीजन और द बेस। उधर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा करकर कई लोगों को चौंका दिया कि वो चाहते हैं कि फिलिस्तीनियों को कहीं और बसाए जाने के बाद अमरीका गाजा पर कब्जा करे और इसे आर्थिक रूप से विकसित करे। वैसे ट्रंप ने ये नहीं बताया कि अमरीका किस तरह और किस अधिकार के तहत गाजा पर कब्जा करेगा। गाजा की आबादी में फिलिस्तीनी आबादी का जबरन स्थानांतरण जो लगभग 2 मिलियन लोग हैं संभवतः अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। उधर ट्रंप का दावा है कि उनकी योजना दुनिया के लंबे समय से संकटग्रस्त क्षेत्र को दीर्घकालिक लाभ पहुंचाएगी।
I do see a long-term ownership position and I see it bringing great stability to that part of the Middle East and maybe the entire Middle East.
अब अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गाजा पट्टी पर कब्जा करने और फिलिस्तीनियों को कहीं और स्थानांतरित करने की योजना की निंदा हुई। रूस, चीन और जर्मनी का कहना है कि ये योजना नई पीड़ा और नई नफरत को जन्म देगी, जबकि सऊदी अरब ने इस प्रस्ताव को सिरे से ही खारिज कर दिया। इधर प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीसी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अभी भी 2 राज्य यानी 2 स्टेट सोल्यूशन का समर्थन करता है।
What I would say is that Australia's position is the same as it was this morning, as it was last year, and it was 10 years ago, and it was under the Howard government. The Australian government support and a bipartisan basis a 2-state solution in the Middle East.
वहीं विपक्षी नेता पीटर डाटन का कहना है कि ट्रंप सहयोगियों को क्षेत्र के पुनर्निर्माण में अधिक योगदान देने की मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। डाटन ने 2GB पर कहा कि उनके विचार में ये टिप्पणियां एक बातचीत की रणनीति हैं।
I think he's serious about making sure that there's not a threat to Israel and we can't have another repeat of October 7 because it was the biggest attack on the Jewish people since the Holocaust. And I think he genuinely wants to see a chance of peace. He wants to see people living not in squalor, but living in a safe environment with good housing for their children, and he wants other countries in the region to step up and take responsibility.
इधर विपक्ष की तरफ से मांग रही कि जांच की जाए कि प्रधानमंत्री को उत्तर पश्चिमी सिडनी उपनगर ड्यूरल में विस्फोटकों से लदे कैरवान के बारे में कब बताया गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने विपक्ष की इस मांग को खारिज कर दिया। वैसे न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिंस ने कहा कि उन्हें जनवरी के अंत में सार्वजनिक किए जाने के कई दिन पहले कैरवान की साजिश के बारे में बताया गया था। एंथनी अल्बनीसी ने यह नहीं बताया है कि उन्हें कब सूचित किया गया था। प्रधानमंत्री का कहना है कि उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वे सुरक्षा कारणों से इस बारे में और विस्तार में नहीं बता सकते हैं और उनका मानना है कि जाँच संसाधनों की बर्बादी होगी। इस बीच ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस के प्रमुख ने भी स्थिति के बारे में विस्तार से बताने में इनकार कर दिया। चर्चा में रहा एआई डीपसीक ऐप। ऑस्ट्रेलिया ने भी इस एआई डीपसीक ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया और चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर सरकारी उपकरणों पर इसके प्रतिबंध के लिए ऑस्ट्रेलिया की आलोचना की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि वो आर्थिक, व्यापार और तकनीकी मुद्दों के राजनीतिकरण का विरोध करता है। ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी की सलाह थी कि डीप सीक एक अस्वीकार्य जोखिम का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन बीजिंग के बयान में कहा गया कि चीनी सरकार को कभी भी उद्यमों या व्यक्तियों के अवैध रूप से डेटा एकत्रित करने या संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं है और न ही कभी होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो पूर्वी लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में चल रही हिंसा समाप्त ही नहीं हो रही और अब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने मध्यस्थता की अपील की इस सप्ताह के अंत होते होते। पिछले सप्ताह कांगो के पूर्वी शहर गोमा पर विद्रोहियों ने हिंसक तरीके से कब्जा कर लिया। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का अनुमान है कि गोमा में कम से कम 2,800 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों हजार विस्थापित हुए हैं। और स्थानीय स्तर पर उत्तरी क्वींसलैंड के निवासी लगातार बाढ़ और अधिक भारी बारिश से जूझते रहे और अभी भी खतरनाक और जानलेवा बाढ़ चेतावनियों और अपडेट पर नजर रखने के लिए कहा जा रहा है। हर दिन आगे 250 मिलीमीटर तक की बारिश हो सकती है। क्वींसलैंड प्रीमियर डेविड क्रिसफोली का कहना है कि राज्य के निवासी हमेशा इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहे हैं। और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव विशेषज्ञता का मिश्रण उन्हें 2000 साल पहले माउंट वेसुवियस के विस्फोट से कार्बन युक्त प्राचीन स्कॉलर्स को समझने में मदद करेगा। 1750 के दशक में रोमन शहर में एक भव्य विला के अवशेषों के बीच हरकुलेनियम के अवशेषों में 1000 से अधिक स्कॉल्स पाए गए थे, लेकिन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ग्रीक कलेक्शन क्यूरेटर पीटर टॉट का कहना है कि स्कॉल्स को जला दिया गया था और लिपि को खोलना विद्वानों की पीढ़ियों के लिए बहुत जोखिम भरा रहा है। उनका कहना है कि इमेजिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नवीनतम वैज्ञानिक तरीकों से उनके जैसे इतिहासकारों को पहली बार स्कॉल के अंदर झांकने का मौका मिल रहा है।
It was Greek, obviously, and I could see one word, which was diatropi in Greek. Diatropi means disgust. And it turned out that according to the large Oxford Dictionary of Ancient Greek, it was a peculiar term which was used by Philodemus, the other Epicurean author whose works are known from the Herculaneum scrolls. So that sort of set us on a path, on the track.
तो ये तो थी इस सप्ताह की वो खबरें जिन्होंने किसी न किसी तरह से हमें प्रभावित किया। इस पॉडकास्ट को डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमसे जुड़िए जब आप चाहें SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के YouTube चैनल, Facebook या Instagram पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो टीवी चैनल 305, SBS ऑन डिमांड या हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi पर।